ओम शांति। हमारी इस तपस्या भट्टी में आज प्रथम दिवस के प्रथम सत्र में हम सबके बीच परमादरणीय राजयोगी रामनाथ भाई जी उपस्थित हैं। रामनाथ भाई जी, हम आपका दिल से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। आज रामनाथ भाई जी हम सबके बीच संगम युग का समय और तीव्र पुरुषार्थ इस विषय को स्पष्ट करेंगे। आप 1972 से अपने जीवन में बाबा के ज्ञान और योग से स्वयं के पुरुषार्थ में तीव्रता लाते हुए ब्राह्मणों के पुरुषार्थ में तीव्रता लाने के निमित्त बन रहे हो। 1978 में आपने अपना जीवन सेवा में समर्पित करते हुए इस मधुबन बेहद यज्ञ में अपनी सेवाएं दी है। आपने अपनी विशेषता का प्रयोग न सिर्फ देश में लेकिन विदेशों में जाकर के भी ईश्वरीय परिवार की पालना और स्व उन्नति हेतु हमेशा किया है। आपने ईश्वरीय सेवा की शुरुआत में यज्ञ के टॉली विभाग में आपने सेवाएं दी। वर्तमान समय आप हमारी राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन की धार्मिक विंग, रिलीजियस विंग के मुख्यालय संयोजक के रूप में, हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बहुत नम्र और सरल व्यक्तित्व और हरेक आत्मा जो भी आपसे मिले उन्हें हमेशा आपकी पालना का, आपकी मधुरता का अनुभव होता रहा है। ऐसे रामनाथ भाई जी का हम पुनः पुनः दिल से स्वागत करते हैं। और चलो अभी इस भट्टी के ये प्रथम सत्र में हम अपने आप को एकाग्र कर दे, मोबाइल को सुला दे और नक्की कर दे कि ये दो घंटा, ये क्लास और उसके एक बात का एक क्लास, ये हमने हमारे लिए समय दिया है। और अभी के विषय को अपने आप में उतारे, संगम युग का समय और तीव्र पुरुषार्थ।
ओम शांति। ओम शांति। देखो, आज का विषय है समय, परिस्थिति के अनुसार है। आज बाबा ने भी मुरली में कहा कि बच्चे, दिन में समय कम है, रात को भी जग करके भी तपस्या करो। ये बाप दादा ने दादी प्रकाश मणि को कहा था कभी 1994 में, बहुत साल पहले, कि बच्ची दिन रात सेवा करते हो, सोने का ताज मिलेगा, लेकिन बहुत जन्मों के किए हुए विकर्म को विनाश करने के लिए रात को जग करके भी तपस्या करो। हम सेवा में दिन रात बिजी है, सेवा से सेवा का फल मिलेगा, लेकिन विकर्म कौन विनाश करेगा? सेवा से नहीं होगा, तपस्या चाहिए। तो आज की दुनिया में जैसे देख लो आप, बरसात का समय आता है, महाराष्ट्र वाले अनुभवी है, बरसात का समय आता है, खेती में बीज बोते हो, आप कहो बीज बोने का समय पर आपको घर में शादी थी, बीमार थे, खेती बोया नहीं है, तो किसको बोलेंगे? किसको बोलेंगे? भगवान को बोलेंगे? ऊपर से गेहूं चावल भेजेगा? नहीं, अपने तकदीर को मांगना पड़ेगा। समय पर खेती बोना तो सारे साल के लिए जो आपको अनाज चाहिए वो मिलता है। किसी भी कारण, कारण बहुत है, तो वो किसको बताएंगे? तो अपने तकदीर को, हमने बोया नहीं है तो मांगना पड़ेगा। तो ऐसे संगम पर, इस संगम का समय सभी के लिए नहीं है। जिसने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आकर यह आध्यात्मिक ज्ञान क्या है सुना, समझा, उनके लिए संगम युग है। बाकी सारी दुनिया के लिए कल युग है। तो इस संगम युग का महत्व कौन जानता है? जैसे स्कूल में बच्चा जाता है तो परीक्षा का समय उसको पता है, कल परीक्षा होने वाली है, उसको रात को नींद भी नहीं आती है, कब पढ़ू, कल क्या होगा, क्या लिखूंगा, चिंता होती है। तो हमारा भी सारे कल्प के जो कमाई का साधन है, जो कमाई करना चाहते हो, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, निरोगी काया, निर्मल मन, धन संपत्तियों से भरपूर, ये कोई ऊपर से बाबा अपने आप नहीं भेजेगा। संगम पर एक समय कलयुग का अंतिम और सत्ययुग का शुरुआत, इस संगम पर अगर आप ये तीनों प्रकार के बीज बोते हो तो एक कल्प के लिए तो आपको हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, ये तीनों जितना चाहे वो मिलेगा। इस संगम पर जो बीज बोते हो उससे जो झाड़ पैदा होता है उसको कहते हैं कल्प वृक्ष। एक सारे कल्प के लिए आपको जो मनुष्य को तीन चीजें जरूरत है, हेल्थ चाहिए, शरीर को कोई बीमारी ना हो, वेल्थ चाहिए, धन संपत्ति चाहिए, और सदा मन, जीवन में खुशहाली चाहिए, ये तीन जरूरी चीज है। तो वो कौन देगा, कहां से आएगा? तो हर चीज का एक समय है। तो सारे कल्प के अंदर अगर आपको ये चाहिए, इस संगम पर ये तीन बीज बोना है। कोई तन से बहुत सेवा करते हो, बहुत अच्छा शरीर है, 100 साल तक भी कोई बीमारी नहीं, बहुत अच्छा शरीर है, लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं है, किसने बनाया? गरीब। किसी को देखो धन इतना है, धन से भरपूर है, घर में खाने वाले कोई बच्चे ही नहीं है, क्या करेंगे धन? तो तीनों में बैलेंस चाहिए। तो आप देखेंगे तन भी बहुत अच्छा है, धन भी बहुत अच्छा है, लेकिन सदा दिमाग में तनाव, नींद नहीं आ रही है, डिप्रेशन है, तनाव है, बीमारी है, दुख है, समस्या है, तो धन होकर के भी क्या फायदा? तो ये तीनों चीज इस संगम पर भाग्य विधाता कौन है? वो सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम रामम सुंदरम नहीं कहा, सत्यम कृष्णम सुंदरम नहीं कहा, गॉड इज ट्रुथ, भगवान सत्य है, अविनाशी है, वो विनाश नहीं होता कभी, तो सत्य है। तो वो कौन है? शिव है, निराकार है। इसलिए भारत में शिव जयंती मनाते, शिव आता है। क्यों आता है? दुखी आत्माओं को, अपने बच्चों को हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस देने के लिए, लेकिन ऊपर से लेके नहीं आता है, इसलिए उनका नाम है भाग्य विधाता, भाग्य बनाने की विधि बताता है। जैसे आपको कहेंगे खेती में बीज बोलो, चलेगा? खेती में बीज बो के आ जाओ, चिड़िया खा के जाएंगी। बीज बोने की विधि है। तो यहां भी तो सारे कल्प में आपको कभी भी गरीब नहीं होना है, कोई बीमारी नहीं होना चाहिए, मन सदा हर्षित रहे, प्रसन्न रहे, तो ये कैसे होगा? तो ये भाग्य विधाता स्वयं आकर सबसे सहज विधि बताता है, कोई कठिनाई नहीं, न संसार छोड़ना है, न कुछ छोड़ना नहीं है, संसार में जैसे रहते वैसे रहो, सब कुछ करते रहो, लेकिन सिर्फ ये दो काम करो, बस दो ही काम, तीसरा भी नहीं चाहिए, इतना सहज है। तो एक सवेरे और शाम को, दो टाइम, शरीर को तो तीन टाइम खाना खिलाते हो, कम से कम आत्मा को दो टाइम स्वच्छ करो। उसका और एक नाम ध्यान, शिव बाबा को याद करो। याद कौन करता है? मन नहीं करता है। कौन करता है याद? बुद्धि। बुद्धि के अंदर याद, अरे इसको दस दफा बताया याद ही नहीं रहता है, बुद्धू बोलते हो ना, बुद्धि को याद रहता है। तो आप संसार सवेरे उठकर बुद्धि योग कहा, क्योंकि सारे विश्व के अंदर आज तक बुद्धि का ज्ञान नहीं है, मन का ज्ञान है, मन लगाओ। सारे विश्वविद्यालय में भी जाओ, फोकस ऑफ माइंड इज कॉन्सेंट्रेशन का, मन लगाओ। इसलिए भारत में ही, भारत में माताएं जब मंदिर में जाते हो, भगवान इस बच्चे को सद्बुद्धि दे दो। बुद्धि हमारे पास नहीं है, भगवान देगा। इसलिए ब्रह्मा कुमारी आश्रम में ईश्वरीय विश्वविद्यालय है ये, स्वयं निराकार सर्वशक्तिवान बच्चों को बुद्धि का ज्ञान देने आया है, तीसरा नेत्र देने आया। देखो गीता अगर आपने सुनी हो, गीता में भी देखो अर्जुन को 18 अध्याय ज्ञान सुनाया, और भीष्म पितामह ऐसे अस्त्र छोड़ देता है, सब पांडव सेना सबका सत्यानाश हो जाता है, तो भी अर्जुन भीष्म पिता पर बाण नहीं छोड़ता है, उनकी हत्या करना नहीं चाहता है, पिता है भीष्म पितामह है। तब श्री कृष्ण को समझ में आता है ये मेरा कहना नहीं मानता है, तब कहा है अर्जुन आप मुझे देख नहीं सकते हो, मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूं। तो थोड़ा सोचो अर्जुन के सामने कौन खड़ा था? आप भी कहते हो, हम भी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण खड़ा था। अर्जुन किसको देख रहा था, कौन खड़ा था उसके सामने? तब कहा आप मुझे देख नहीं सकते हो, तब गीता में कहा श्री मत भगवत गीता है, श्री कृष्ण उवाच है, बोलने वाला कौन? श्री कृष्ण। बोलता कौन? भगवान। भगवान की गीता है, भगवान निराकार। अर्जुन श्री कृष्ण को देख रहा था, लेकिन निराकार भगवान को देख नहीं सकता था। तब का आप मुझे देख नहीं सकते हो, मैं अपना रूप दिखाता हूं, दिव्य दृष्टि देता हूं। आज भी दुनिया वालों को बुद्धि का ज्ञान नहीं है, इसलिए हम और आप कहते हो, ज्ञान सुनते, मुरली सुनते हो, किसी को दान करते हो? नहीं करते। सवेरे मुरली सुनी, किसी ने किसी को सुनाया? नहीं, सुन के रख दिया, सुन करके भूल भी गए, तो वो सत्संग नहीं है ये, सुनो और भूलो। तो यहां लिखेंगे पढ़ेंगे बनेंगे राजा, लिखेंगे भी पढ़ेंगे भी दोनों चाहे, सिर्फ सुनेंगे तो नहीं, क्योंकि बुद्धि किसी की इतनी स्वच्छ नहीं है, जो बुद्धि में जो सुना वो याद रहे। क्यों पूछेंगे आप? ये सारे शरीर को कौन चलाता है? जब आप रात को आंखें बंद करके सोए हो तो रात को टीवी देखते हो? महाराष्ट्र वाले टीवी देखते हैं? नहीं देखते है? देखते हो रात को टीवी? कौन कौन देखते हैं? सब देखते, आंखें बंद करके देखते हो, खोल के नहीं, आंखें बंद करके टीवी देखते हो? हाँ, हर एक देखता है। स्वप्न, स्वप्न कब आते हैं? जब ये आंखें बंद करके सोते हो तो स्वप्न आता है ना, कहां से आता है? ऊपर से तो नहीं आता है, कहां से आता है? अंदर जो भरा हुआ वो दिखाई देता है, वो बुद्धि नेत्र देखता है। ये आंखें बंद होने के बाद अंदर के आंख देखता है। तब आया दुनिया में भी जो ज्ञान शरीर को कौन चलाता, आंखें बंद करके सोते हो, मच्छर काटता है, तुरंत ऐसे करते हो, कौन करता हो? सोए हो आप, नींद में भी बुद्धि शरीर को संभालती है। तो ये बुद्धि के अंदर आज जो मुरली सुनी ज्ञान, वो बुद्धि के अंदर गया। आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताया। क्या बताया? बच्चे बहुत जन्मों का कर्मों का बोझ है, धर्मराज में सजा भोगनी पड़ेंगी। तो बाप के साथ इज्जत से जाना चाहते हो तो क्या करो? बाबा के याद से विकर्म विनाश करो, स्वच्छ करो। कहा ना, तो ये किसको याद है? सुना सबने, लिख भी रखा। अगर आपके बुद्धि में है तो आप अपने आप को बार बार पढ़ाते हो, आज बाबा ने क्या कहा, आज बाबा ने क्या कहा, तपस्या करो कहा, विकर्म विनाश करना है, बहुत बुरे स्वप्न आते हैं ये मिटाना है, नहीं तो सजा भोगनी पड़ेंगी, बाबा के साथ जा नहीं सकेंगे। ये अंदर बार बार दिल, माना ये दिल नहीं बुद्धि खाती है, बुद्धि महसूस कराती है, तब कहते हैं दिल खाता है। ये दिल खाता नहीं है, ये खून चलाता है। दिल और दिमाग, दिमाग माना मन, मन बहुत चलाते हो, दिल बुद्धि, अगर बुद्धि के अंदर आज की एक मुरली के पॉइंट गया तो वो अंदर ही अंदर अपने आप को पढ़ाते हो, आज बाबा ने ये कहा, आज बाबा ने ये कहा, ये कैसे करूं? कोई मिला बात करेंगे, जो दिल की बात अंदर रहती नहीं है, जरूर आप दान करेंगे, आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताया कि कैसे योग करे, कब करे। योग में सवेरे उठ ही नहीं सकते, नींद आ जाती है, शाम को योग में बैठू तो फिर व्यर्थ विचार आते हैं, माया आती है, क्या करो? तो ढूंढेंगे, एक दूसरों को पूछेंगे। जिसको प्यास लगती है तो देखता है पानी कहाँ मिलता है, अरे सहन कर लो ना, एक घंटा चलेगा, नहीं पानी कहाँ मिलेगा, पानी चाहिए। जैसे आपने देखा कोरोना के समय पर सारे भारत विश्व के अंदर कितने झाड़ पौधे हैं, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन मनुष्य को ऑक्सीजन जब चाहिए तब नहीं मिला। एक ऑक्सीजन के लिए, प्राण वायु के लिए कितने तड़पे। तो ऐसे यहां भी अगर बुद्धि के अंदर ज्ञान गया, मन चंचल है, इच्छा वस्तु व्यक्ति, कोई आइसक्रीम खा रहा है, आपके अंदर इच्छा होंगी मुझे भी आइसक्रीम खाना चाहिए, चाहिए, खाते थे पहले, अभी बुद्धि के अंदर ज्ञान आया कि बाबा ने कहा बाहर की चीज खाना नहीं, समझ में आया बुद्धि में, जब आइसक्रीम देखते ही विचार आता है आइसक्रीम खा लो, कोई देखता है, कोई नहीं है, तुरंत बुद्धि कहेंगे नहीं बाबा देखता है ऊपर से, बाबा ने कहा था। ये बुद्धि अपने आप को पढ़ाती है, इसलिए कहा इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर ज्ञान के द्वारा स्वयं को परिवर्तन करो। लेकिन कौन करेगा परिवर्तन? आप कहते आइसक्रीम तो खाना चाहिए, ये भी खाता है, वो भी खाता है, लेकिन जिसके बुद्धि में ज्ञान गया है, समझ आया है कि भगवान ने कहा है, हमारा बाप कहता है, मुझे उनके साथ सत्युग में जाना है, तो इसलिए उसने कहा कि किसी का बाहर का नहीं खा, वो खाता है खाने दो, मुझे नहीं खाना है। तो बुद्धि के अंदर अगर ये ज्ञान गया है, उसको कहते हैं दृढ़ संकल्प, समझ में आया, बुद्धि अपने आप को पढ़ाती है। इसलिए दुनिया में लोग कहते हैं दूसरों को पढ़ाना सबसे सहज काम है, और सबसे कठिन काम है स्वयं को पढ़ाना। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ज्ञान किसके लिए और किसी के लिए, योग किसके लिए कर रहे हो? सवेरे उठ करके योग करो, शाम को योग करो, किसके लिए नहीं करो? नहीं उठो, सो जाओ आराम से, अंत में पश्चाताप होगा। जब दर्द, जैसे ऑक्सीजन के लिए कैसे तड़पे, आपने देखा एक एक का सीन, तो ऐसे तड़पना पड़ेगा। उस समय कोई कुछ नहीं कर सकता, किए हुए पाप चाहे लाख करो चतुराई, ये लेप मिटे ना रे भाई। आप में से कहेंगे भाई जी हमारे अंदर तो कोई पापी नहीं है, दिखाओ। अगर आप डॉक्टर को कहो हमको कोई शुगर नहीं, मैं बहुत अच्छा हूं, तो डॉक्टर तुरंत एक्सरे निकाल के दिखाता है आपको शुगर कितना है, बीपी कितना है। तो यहां भी मुखड़ा देख लो, कैसे देखेंगे? जब रात को आंखें बंद करके सोते हो, स्वप्न कहां से आ रहे हैं? उसके अंदर चार प्रकार के स्वप्न हैं। उसके अंदर दो प्रकार के स्वप्न आत्मा को पतित बनाता है। काम और क्रोध के स्वप्न अगर आते हैं तो उसको पाप आत्मा कहा जाएगा। अगर आप में से कोई कहो आज से एक महीने के अंदर एक दिन भी काम और क्रोध के स्वप्न नहीं आया, कम से कम एक महीना, ज्यादा से ज्यादा छह महीने तक, वो कह सकते हैं मैं फरिश्ता हूं, मैं कर्मातीत हूं, मैं पुण्य आत्मा हूं, अंदर काम और क्रोध नहीं है तो हल्का है, फरिश्ता है, कर्मातीत है, विकर्म नहीं है, पाप नहीं है, पुण्य आत्मा है। जहां बुद्धि, क्यों, कैसे अपने आप नहीं हुआ कि रोज ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर ईश्वरीय विश्वविद्यालय में रोज बाबा सुनाता है, आज भी सुनाया, अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो। तो मेरे क्यों, आत्मा के अंदर पाप है, शरीर के अंदर नहीं, आत्मा के अंदर है। आत्मा को पावन बनाने के लिए सुप्रीम सर्जन परम आत्मा वो आया है, शरीर की बीमारी ठीक करने के लिए नहीं, वो डॉक्टर करेगा। आत्मा की बीमारी मिटाने के लिए उसने कहा वो पतित आत्मा को पावन करता है, विधि बताया, आत्मा समझ, आत्मचिंतन करो, और परमात्मा कौन, सर्वशक्तिवान है, उसको सवेरे पांच दस मिनट आधा घंटा, अगर सर्वशक्तिवान से बुद्धि योग जैसे ज्ञान सुना भी, अगर जब बैठते हो योग करने सवेरे तो पूछते हो आज सवेरे क्या कहा था, कैसे योग करना चाहिए, तुरंत बुद्धि कहेंगे हां कल कहा था आत्मा समझ, शिव बाबा के सर्वशक्तियों का चिंतन करो। जिसने अच्छे ध्यान से सुना बुद्धि को याद है, तो योग में बैठते क्या करूं, हां कल कहा था, तो बुद्धि को याद है, तो इसके लिए कहा बुद्धि विधि पूर्वक करती है। तो बुद्धि योग अगर शिव बाबा से जोड़ते हो ये विधि, तो बुद्धि के अंदर जो पाप है स्वच्छ हो जाता है। अगर जिसके अंदर बुद्धि स्वच्छ हुई, मन कितना चंचल हो, कितने बुरे संस्कार हो, संस्कार को समझाता है नहीं ये नहीं खाना है, ये नहीं करना है, मन चंचल है, मन को समझाता है ये नहीं करना, ऐसा नहीं सोचना, ऐसा नहीं देखना, कौन करता है, बुद्धि। तो मैं कौन, बुद्धि, बुद्धि कहती है मेरा मन, मेरे ऐसे संस्कार, मैं कौन, जिसका ज्ञान दुनिया में नहीं था। तो ये शिव बाबा ने आके इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जब आए हो तब ये ज्ञान मिला, समझ मिली, तब कहते हैं भगवान सत बुद्धि देता है। तो जिसके अंदर बुद्धि मिली, समझ में आया, तो सवेरे शाम को वो शांति से सो नहीं सकता है। अगर खेती वाला उसको बोलो बरसात आई, तो वो शांति से घर में बैठ नहीं सकता है, अपना सब ट्रैक्टर लंगर सब लेके खेती में जाएगा, खेती बोना है, बाल बच्चों को संभालना है, अनाज सारे साल के लिए अनाज चाहिए, चिंता है कब बरसात आएंगी, कब खेती में बीज बोएगा। तो जो बच्चों को भी बुद्धि के अंदर ज्ञान मिला उनको भी चिंता है सवेरे कब होगा, कब शिव बाबा से मिलके मैं सर्वशक्ति भरूं, कब शाम को छह बजेंगे सात बजेंगे योग में बैठकर शिव बाबा से सर्वशक्तियां लेनी है, कब होगा, इंतजार करता है, पता ये संगम का थोड़ा सा समय है, सारे कल्प का आधार है। अगर किसी कारण, तब बाबा ने आज का अभी बच्चों को कभी भी छुट्टी नहीं मिलती है, दुनिया में बहुत बड़ी छुट्टी है, लेकिन यहां बच्चों को एक एक सेकंड का वैल्यू है. अगर एक एक सेकंड बाबा ने कहा एक साल के समान है, सारे क्लब के अंदर ये संगम का 100 साल मिलते हैं, उसमें ही 25 साल बचपन कैसे चले जाते हैं, अंत में बुजुर्ग हो गए कुछ कर नहीं सकते हो, तो थोड़े से 15-20 साल मिलते हैं, उस 15-20 साल के अंदर ही सारे क्लब के लिए जो कमाई चाहते हो वो कमाई जमा करने का समय है. ये वैल्यू जानना चाहिए, समय का वैल्यू जानो. तो इस समय फिर आप पूछेंगे दो ही काम का, एक सवेरे और शाम को, कम से कम 15 मिनट, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा. सबको किसी ने आपको कहा 1 करोड़ रुपए देता ले लो? नहीं, नहीं चाहिए, वो खाया पिया खत्म हो जाएगा. यहां एक दिन अगर आपने योग नहीं किया, एक जन्म खाली जाएगा, एक जन्म के लिए मांगना पड़ेगा. अगर इस सीजन में बरसात में आपने खेती में बीज नहीं बोया तो कहां से आएगा? ऊपर से गेहूं आएगा, चावल आएगा, मांगना पड़ेगा ना. गरीब क्यों बने? किसने बनाया? हमने. तब कहा भाग्य आपके हाथ में है, चाहे सारे क्लब 84 जन्म के लिए आप अपने आप को हेल्दी वेल्दी बना सकते हो, चाहे 10-20 जन्म के लिए बना सकते हो. कोई किसी को कुछ नहीं करता. इस ब्रह्मांड के अंदर सबको स्वतंत्रता है, जो करेंगे वो पाएंगे. बिना खेती में बीज बोए हुए आप कहो कुछ उगेगा, ऐसा है? बिना बोए हुए कुछ उगेगा? नहीं, भगवान उगाएगा, बोला ना तो करेगा नहीं. भगवान भी अपनी ताकत बताता, मैं क्या कर सकता हूं, मैं कौन हूं, सर्वशक्तिवान का कौन सी शक्ति है. तब कहा संगम को अच्छी तरह से जानो और तीव्र पुरुषार्थ. तीव्र पुरुषार्थ में भी क्यों, क्या करना चाहिए? कितना दौड़ सकते हो आप? संसार को छोड़ के किधर जा नहीं सकते हो. इस कलयुग दुनिया में 2 रोटी कमाने के लिए भी 8 घंटा चाहिए. पहले ऐसे नहीं था, 2-4 घंटा भी कम करो चलता था. तो समय परिस्थिति के अनुसार सिर्फ रोज 15 मिनट या आधा घंटा. अभी जानते हो आप, अभी कोरोना के समय पर आपने देखा घर से बाहर नहीं जा सकते थे, कुछ नहीं मिल रहा था. अभी थोड़े समय के अंदर ऐसे समय आ रहा है, सारा विश्व आणविक युद्ध करने जा रहा है, किस समय बॉम्ब कहां गिरेगा पता नहीं चलेगा. दुनिया की परिस्थिति देख लो. और जो करना था वो आज करो, कल पता नहीं. ऐसी परिस्थिति के अंदर कहते हैं शक्तिशाली योग करो, पावरफुल योग करो, ज्ञान दान करो. दो ही काम करने के लिए कहा. तो शक्तिशाली योग अपने आप नहीं होता है. जैसे साइंस ने हमको सिखाया, आपको सबको दिया मोबाइल, इतना छोटा सा मशीन है, उसके अंदर 10 नंबर डालो, 1 सेकंड के अंदर आपका आवाज यहां से अमेरिका चला जाता है. कैसे गया वो? जादू किया, चमत्कार किया, कैसे आवाज गया? ऐसे ही आप यहां बैठे बैठे अगर आप आत्मा रूपी मशीन के अंदर, मोबाइल के अंदर 5 नंबर डालो, आपका आवाज परम धाम में पहुंचेगा. तो ये कोई चमत्कार नहीं, ये विधि है. सिर्फ 5 नंबर, वहां दुनिया में ज्यादा मेहनत करना पड़ता, डबल 10 नंबर चाहिए, यहां 5 ही नंबर बस. 5 नंबर अपने अंदर डालो, उसको कहा आत्मा समझ, मुझे याद करो. तो कैसे आत्मा समझो? नंबर डालना चाहिए. अगर वहां मोबाइल में भी ऊपर नीचे करो नंबर तो आवाज जाएगा, यहां भी विधि से सिद्धि है. जब अमृत वेले शाम को बैठते हो, बैठते ही अपने आप से पूछो मैं कौन. किसको पूछा? बुद्धि को. जो ज्ञान सुना है तो ज्ञान का उपयोग प्रयोग योग है. यहां सिर्फ गीत सुनते बैठना, आराम से बैठे रहना, नींद आएंगी, तो ये योग इधर नहीं है। तो ब्रह्मा कुमार इसके अंदर यो राजयोग कहा। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एक ही राजयोग है जिससे विकर्म विनाश कर सकते हो। आप पूछेंगे विकर्म स्वप्न बताता है, तो विधि कौन सी? दवाई लेने की विधि है, बैठते ही पूछो मैं कौन। बुद्धि सत्य बोलती है, वो झूठ नहीं बोलती है। मैं कौन? मैं पाप आत्मा हूं, पुण्य आत्मा हूं, कौन सी आत्मा हूं? तुरंत बुद्धि बताएंगे मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं। सिर्फ बाबा का नहीं, बाबा का कहेंगे रामदेव बाबा भी है, बहुत बाबा है। किस बाबा के बच्चे हो? सर्वशक्तिवान, साधारण नहीं, सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं। फिर पूछो मेरा रूप कैसा है, तुरंत बुद्धि जवाब देती है मैं एक सफेद चमकता हुआ सितारा हूं। फिर पूछो मेरे गुण, हां मैं पवित्र था सत्युग में, अभी नहीं, अब मुझे बनना है। मैं शांत शीतल था, कभी था, सत्युग में था, अब मैं, अभी गुस्सा आता है, अब मुझे शांत शीतल बनना है। एक एक दैवी गुण अपने आप को याद दिलाओ, मेरे गुण कौन से थे और अभी कौन से हैं, अभी इनको चेंज करना है, परिवर्तन करना है। फिर मेरे कर्म, मैं क्या करता हूं? इस ब्रकुटी में बैठकर आंखों से इधर उधर देख सकता हूं, अभी योग में बैठा हूं, कौन आया कौन गया इधर उधर नहीं देखना चाहिए। स्थित प्रज्ञ कहा, अशरीरी बनो का, शरीर को यू योग में बैठे इधर देख रहे हो, उधर देख रहे हो, हाथ हिला रहे हो, पाव हिला रहे हो, तो शरीर को यूज नहीं करो, अशरीरी बनो। तो अपने आप को समझाना पड़ता है, अब मुझे आधा घंटा योग में बैठा, शरीर का कोई काम नहीं, एक जगह पर देखते हुए आराम से बैठो, अपने आप से पूछो मैं कौन। धीरे से मेरा रूप क्या है, मेरे गुण क्या है, मेरे कर्म क्या है, मैं कहां से आया, परम धाम से। ये पांच नंबर याद रखो, ये नंबर अगर अपने अंदर डालते हो आपका आवाज सीधा परम धाम में पहुंचता है। सारी सृष्टि को तब बाबा ने कहा विश्व कल्याणकारी हो, भगवान के शिव बाबा के मददगार बच्चे हो। शिव बाबा को क्या चाहिए? पैसे चाहिए? मकान चाहिए? पवित्र बच्चे चाहिए। आज कहा ब्राह्मणों का धर्म है पवित्र स्वच्छता, तो कहां से आएंगे वो? वो योग बल है। नहीं तो स्वामी विवेकानंद जी कहते थे मुझे 100 ब्रह्मचारी मिलेगा तो बस मैं भारत का नक्शा ही चेंज कर दूंगा। आज शिव बाबा को, बाप दादा को कितने ब्रह्मचारी मिले? आज देखो कितने सेंटर में बहने हैं, आज भारत में कम से कम 50-60 हजार होंगे। कुमार कुमारी कुमारी कितने होंगे सारे सेंटर में, कुमार कितने होंगे? आप देखो आप इधर बैठे हो, गृहस्थ में रहते हुए पवित्र कितने हो, तभी तो यहां पहुंचे हो, नहीं तो बहन जी इधर आने की छुट्टी नहीं देगी आपको। गृहस्थ में रहते हुए, नहीं तो दुनिया कहती है आग और कपूस एक साथ रह नहीं सकता है, तो आपने बताना चाहिए, हम रह के देखते दिखाते हैं हम रहते हैं। अब बताओ आप कौन कौन कहते हैं हम आग और कपूस साथ रहते हुए भगवान शिव बाबा के श्रीमत पर चलते, हाथ उठाओ देख लो। हाँ देखो कितने हो। हाँ दुनिया को देखना पड़े, भारत माता की जय कहा, भारत के अंदर गृहस्थ धर्म था, तो गृहस्थ में रहते हुए भी पवित्र हो, समझ में आया ये किसकी ताकत है? ये वो योग बल है। सवेरे और शाम को जो तपस्या करते हैं इस विधि से, आत्मा समझ के शिव बाबा को याद करते हो, तो वो शक्ति देने आया है, दर्शन देने नहीं आया, सिर्फ ज्ञान सुनाने नहीं आया, शक्ति देता है। उसके बल से आज गृहस्थ में रहते हुए भी इतनी परिस्थितियां है, इतनी समस्या है, तो भी पवित्र इधर पहुंचे हो, प्रूफ है। बड़े बड़े साधु सन्यासी शंकराचार्य पूछते हैं, हमने देखा पुरी का जगन्नाथ पुरी में शंकराचार्य पहले मिलता ही नहीं था, बहने अगर जाती थी राखी बांध भी नहीं देता, खुर्ची को बांधो, फिर तो भी बहने हर साल जाती थी। फिर कहा एक दिन बिठाया कि आप लोग पवित्र कैसे रहते हो, हम तो दो चार लोगों को भी रख नहीं सकते हैं। तो आपके मई गया था खास, तो कहा आपके माउंट अबू में मुझे आना है कि आप लोग कैसे इतने गृहस्थ में साहब बहने भाई सब मिलके पवित्र कैसे रहते हो, देखना है। तो मनुष्य देखना चाहता है, पहले सुनना चाहता था, इसलिए इंग्लिश में कहते हैं सत्य क्या है, यू मस्ट सी एंड यू मस्ट लिसन एट द सेम टाइम, एक साथ देखना और सुनना। तब हम इस डायमंड हॉल में कैसे बाप दादा गुलजार दादी के तन में आके कैसे ज्ञान सुनाता है, सुनते भी है और देखते भी है। 50 सालों से देखो कितने गुरु महात्माएं देवताएं गए, कहां गए वो, कोई आया वापस? लेकिन ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ने के बाद बाप दादा गुलजार दादी के तन में 50 सालों से आकर आप सबकी पालना किया ना, आप सबकी पालना किसने किया, आप सबके लिए इतना बड़ा डायमंड हॉल किसने बनाया, किसके लिए बनाया? तो बाप दादा ने, ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ने के बाद भी ऐसे कोई भी सत्य साई बाबा पुटपत्रिका गया कहां गए, किसी के शरीर में आ सकते हैं ना, आके ज्ञान सुना सकते हैं, कहां गया वो? कोई भी गया हुआ आया तब कहा कैसे बाप दादा आकर के पालना करता है? तो भगवान की रचना इतनी सुंदर तो भगवान कितना सुंदर होगा। तब का सत्यम शिवम सुंदरम, तो आप समझते हो कि हम भगवान के बच्चे, जो समझते हैं सच्चे दिल से बताना, हम भगवान के बच्चे समझते हो वो हाथ उठाओ, दिल से ऐसे नहीं उठाना पक्का। देखो भगवान के अभी हाथ नीचे करो, अभी आपको बोलो भगवान के बच्चे कभी गुस्सा कर सकते हैं? अब बताओ जो कहते हो हम भगवान के बच्चे गुस्सा नहीं करते हैं वो हाथ उठाओ। हाँ अभी देखो कितना कम हो गया, भगवान के बच्चे, वो भगवान के बच्चे गुस्सा कर सकते हैं? नहीं। गुस्सा करते हो तो रावण के बच्चे कहेंगे ना। हाँ अभी हम भगवान के बच्चे बन रहे हैं, रावण के जेल से बाहर आ रहे, बाहर आए नहीं अभी, आने वाले हैं। हाँ शांति वन में भट्टी करके रावण के जेल से बाहर आ जाएंगे पूरा, है ना, वो वादा करके जाओ कि रावण को लेके नहीं जाएंगे, रावण के जेल से बाहर आके दिखाएंगे हम, ऐसा है ना। और जो समझते हम भगवान के बच्चे वो पक्का करना हम भगवान के बच्चे याद रखना, नहीं तो बाबा की बेइज्जती होंगी, भगवान के बच्चे और गुस्सा करते हो। आज कहा शिव बाबा के जो निंदक है, निंदा करते हैं तो वो ठोर पाएंगे, उच्च पद पाएंगे? नहीं। तो याद रखना हमें गुस्सा नहीं करना है तो ये भगवान की निंदा हो जाएंगी, कोई देखेगा तो कहेगा अरे ये तो भगवान के बच्चे अरे गुस्सा करते हैं, तो निंदा किसकी हुई, आपकी नहीं हुई, सतगुरु का निंदक। तो याद रखना कभी भूल से भी अगर गुस्सा आता है, आता नहीं है, करते हम, कहीं से आता नहीं है, हर एक को पता है। अगर माताजी घर में कुछ बोलती है तो बच्चे चुप रहते, कुछ बोलते नहीं है, कहीं ऑफिस में कोई कुछ बोलता है बड़ा व्यक्ति तो चुप रहते हो, सहन करने की शक्ति है हमारे अंदर। लेकिन जो कमजोर देखते हो, छोटा कोई देखते हो, उसके ऊपर बरस जाते हो, तो इसलिए सहन करने की शक्ति कहां से लानी, नहीं समझ चाहिए। सदा याद रखो कि मैं कौन, मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं। और तब पता चलता है राजा का बच्चा कभी मांग सकता है क्या, नहीं मांग नहीं सकता हो, उसको पता है मैं राजा का बच्चा हूं। तो ये स्मृति हमारी वृत्ति को परिवर्तन करती है, वृत्ति माना बुद्धि के अंदर जो चलता है उसका नाम वृत्ति, मन के अंदर जो चलता है संकल्प, संकल्प शक्ति। अगर आपने ध्यान दिया हो कल बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, देखो तीन प्रकार की शक्तियां हैं, कल सुना था मुरली ध्यान से, सत्युग में श्री कृष्ण का जन्म संकल्प शक्ति से होता है, योग बल से। द्वापर युग में, तंत्र मंत्र वाणी की शक्ति, मंत्र गाते हैं उधर, और संगम पर कौन सी शक्ति? बुद्धि की शक्ति, बुद्धि बल, योग बल। तब का वृत्ति से वातावरण बनता, वृत्ति से प्रकृति को भी परिवर्तन करते हो, मन की शक्ति से नहीं, बुद्धि की शक्ति से। इसलिए बुद्धि योग। तो बुद्धि जो सोचती है उसको कहते वृत्ति, वृत्ति से वातावरण बनता है। इसको साइंस ने करके दिखाया। यहां नंबर डालो, एक मिनट के अंदर अमेरिका गया। उसको कहते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, करंट भी चाहिए मैग्नेट भी चाहिए। तो हमारे पास दोनों ही है, संकल्प शक्ति है और बुद्धि। देखो सबको फोटो निकालती है, सबकी बातें याद रखती है, चुंबक है, खींचता है। तो शक्ति और चुंबक। मन ने पूछा मैं कौन, बुद्धि ने जवाब देना चाहिए, ये दोनों एक हो गया। तब जो निकलता है वो वृत्ति का, वो पावरफुल है, उससे प्रकृति को भी परिवर्तन कर सकते हो, अन्य आत्माओं को भी। बाबा ने कहा ऐसे, आज दुनिया में किसी को ज्ञान नहीं चाहिए, दृष्टि दे दो, शक्ति दे दो, सहन नहीं कर सकते इतना दर्द, इतना दुख, इतनी समस्या, शक्ति चाहिए। तो बच्चे आज बाबा ने मुरली में कहा, रावण जैसा व्यक्ति भी सामने आएगा, कोई आपको गाली भी देगा तो क्या करो, गाली भी देगा हो सकता है, कर सक क्या करो, कहा कि शुभ भावना, शुभ भावना, शुभ कामना कहां से लाएंगे, मार्केट में मिलता है, शुभ भावना शुभ कामना कहां से लाएंगे, कौन बताएगा। आज मुरली में कहा बाबा ने, अपने अपने प्राप्त किए हुए खजानों से, बाबा से नहीं, बाबा आप दे दो, आप पाप करो और बाबा देवे, कहता अपने प्राप्त किए हुए खजानों से शुभ भावना और शुभ कामना दे दो। तो ये रूहानी सेवा है, सिर्फ ज्ञान सुनाना सेवा नहीं। हाँ सामने कोई इंसल्ट करता है, गुस्सा करता है, गलत शब्द बोलता है, बोलता है, घर में पति बच्चे सुनते नहीं है, है ना, तो आप कहेंगे बच्चे आपके नहीं, ये भगवान के बच्चे हैं, पति आपका कहां तक है, नहीं ये शुभ बाबा का बच्चा है। इसलिए भारत के अंदर एक नियम है, पति परमेश्वर का, परमेश्वर थोड़ी है, भगवान का बच्चा है। मेरा पति कहते हो, मेरा घर कहते हो, मेरा बच्चे कहते हो, वहां दुख समस्या है। सिर्फ मेरा नहीं बाबा, आपके बच्चे हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं, ये बाबा का घर है, गृहस्थ में आश्रम, कुछ नहीं करना, कुछ छोड़ना नहीं। लेकिन कोई पूछेंगे ये किसका बच्चा है, हाँ मेरा बेटा है, ये किस कौन है, ये मेरा पति है, परिचय देने के लिए जरूर दे दो, लेकिन बुद्धि के अंदर ये याद रखो मेरा यहां कुछ नहीं है। हम खाली हाथ आएंगे, आए थे, लेकिन खाली हाथ नहीं जाएंगे, सर्वशक्तियां भर के जाएंगे। दुनिया कहती है खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, हम खाली हाथ जाएंगे नहीं, कैसे हाथ भर के जाएंगे, ज्ञान और योग की शक्ति। रोज एक मुरली के पॉइंट ले लो, बस एक ही, दो भी नहीं चाहिए, रोज मुरली सुनो और एक शब्द सुनी हुई आपको नहीं, हमें भी याद नहीं रहता है, लिख कर एक शब्द जेब में रखना, भाई जेब में रखो, माता है अपने साथ, घर में किचन में रहते हो टेबल पर रखो, जब खाना खाते हो बाबा के याद में खाना खाओ, क्या याद करेंगे, कुछ याद ही नहीं, जेब में है। आज बाबा ने ये कहा था बाबा को, ये बाबा की याद करो, खाना खाओ सवेरे दिन में शाम को, कम से कम 3 दफा अपने आप को पढ़ाओ, और कोई भी मिला सारे दिन में याद नहीं, जेब में है, पढ़ के बताओ। ज्ञान दान करना सीखो, तब देखना चेहरा सदा खुश रहेगा। गुलजार दादी बोलती थी, हम देखा बचपन में, शुरू में हम मधुबन में आए तो गुलजार दादी कहती थी खुशी बांटो। हमने एक दिन सोचा दादी को पूछना, दादी खुशी कहां मिलती है, कौन से मार्केट में मिलती है, आप देते हो, आपके पास खुशी है, पूछने वाला था। तो एक दिन सोचा मैंने बैठ के, खुशी बांटो, तब समझ में आया कि रोज का एक मुरली के पॉइंट याद रखो, अपने आप को पढ़ाओ, औरों को दान करो, जो भी मिला सवेरे से शाम तक दो चार लोगों को मुरली के पॉइंट सुनाओ, आप देखना उसका चेहरा खिलता है, आपको भी देखना अपने आप को, आज मैंने मुरली के पॉइंट सुनाया, आज मैंने सेवा किया, स्वयं भी खुश। अगर किसी को खाना दे दो शाम को भूख लगेंगी, किसी को 1000 रुपया दे दो, अरे और भी चाहिए था, पेट भरता नहीं है, लेकिन ज्ञान के पॉइंट सुनाओ, एक पॉइंट से खुश। तो ये ज्ञान ऐसा है। तो ब्राह्मण वो है जिसके मुख से सवेरे से रात तक आज की मुरली के पॉइंट अगर किसी को सुनाते हो, रात को कमरे में सोते हो, दो चार लोग होते हैं, दो तीन लोग सोते हो, सोते सोते आज बाबा ने ये कहा था, कमरे में सुनाओ रात अंत तक, दिन में खाना खाने बैठते हो, कोई मिले, किसी का फोन आया, ब्राह्मण वो है जिसके बुद्धि में ज्ञान है आज की मुरली के पॉइंट, तब कहेंगे ब्राह्मण ये एक काम करना है बस, तब सब चिंताएं सब दुख, जो सदा हर्षित रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए, कोई देखे तो कहेंगे भगवान इनको पढ़ाता है। तो भगवान की इज्जत, बाबा ने आज कहा मेरे साथ इज्जत से चलो, नहीं तो धर्मराजपुरी से बाप के सामने कोई इंसल्ट करे किसी को तो चलेगा, इज्जत से चलो। तो इज्जत से चलने के लिए किया हुआ पाप है, दिखाई देता है, स्वप्न आते हैं, मन बताता है, मन के अंदर गलत विचार आता है, कोई एक भी व्यक्ति नहीं होगा जिसने मन को जीता हुआ हो, हम मन के गुलाम हैं, न चाहते हुए आते हैं, कहां से आता है वो, अंदर भरा हुआ है। तो अंदर की सफाई करने के लिए सवेरे 15 मिनट आधा घंटा, ज्यादा नहीं, एक एक दो दो घंटा नहीं, इतना बैठ नहीं सकते, पुराना शरीर है, तमो प्रधान है, तो बहुत मेहनत नहीं करो, 15 मिनट ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा, विधि है, आत्मचिंतन करो, 5 नंबर याद रखना, नहीं तो मोबाइल जाएगा नहीं, आवाज ऊपर जाएगा नहीं, एक घंटा योग में बैठे कहेंगे बाबा ने फोन उठाया नहीं है, बाबा कहते मेरे पास आपका आवाज ही नहीं आया, आप कहते बाबा मैंने इतना योग लगाया, अरे नंबर देख लो आप, नंबर गलत है आपका, आपका आवाज ऊपर गया ही नहीं है। तो विधि से सिद्धि, अगर ये दो काम करते हो बस, ज्यादा नहीं चाहिए, बहुत कुछ करने जाओ उस कलयुग दुनिया में नहीं होता है, तो फिर टेंशन आता, अरे ये करना है, ये चार्ट लिखना है, ये करना, बहुत कुछ करना है, नहीं हो सकता, बाबा की श्रीमत भी बहुत कुछ है, एक साधे तो सब साधे। तो अभी 5 मिनट है आपके पास, तो नंबर भूल जाएगा ना, नंबर अपने आप को घोटो तो नशा चढ़ेगा, तो 5 मिनट बैठ के अपने आप से 5 प्रश्न पक्का रिकॉर्ड कर लो, नहीं तो कहेंगे गलत हो जाएगा, तो फिर से बताता हूं। तो योग करना माना सवेरे शाम बैठते ही आत्मचिंतन करो और परमात्मा चिंतन, इतना सहज है और कुछ नहीं करना है, तब कहा सहज, अपने आप से बात करो, शिव बाबा से बात करो। तो कैसे बात करो, अपने आप से पूछो मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म, मैं कहां से, तो इधर उधर के कोई विचार नहीं आएंगे, क्योंकि मन और बुद्धि को ज्ञान से चला रहे हो आप, अगर नहीं है तो इधर बैठे बैठे जरूर नींद आएंगी, ठंडी हवा लगी नींद आएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कब आंखें बंद हुआ, जरूर इधर उधर के विचार आएंगे, नहीं आना चाहे संभव नहीं है। अभी कोई माता इधर अगर बैठे हो, उस माता को जरूर याद आएगा 12 बज गए, बजने हम गए, बच्चे ने खाना खाया कि नहीं है, आना चाहिए, गलत नहीं है, मां को अपने बच्चे याद आना क्या बोलो धर्म है, उसका मां का धर्म है। अगर अपने को मां समझते हो तब का आत्मा समझो, तो बच्चे और कोई भी याद नहीं आएगा। तो विधि है, आत्मा समझ मुझे याद करो, कर सकते हो कि किसी को नींद करना है, आंखें बंद करना है, आंखें बंद भी नहीं करो और एक जगह देखते इधर उधर हिलो भी नहीं, आराम से 5 मिनट है, ठीक है 5 मिनट योग करेंगे, उसके बाद गीत बजेगा और सफेद लाइट में, नहीं तो नींद क्या हो तो दिखाई देता है, कौन कौन ऐसे करता है, टीवी में तो दिखाई देगा, वो बाद में दिखाई देगा, अरे आप माता जी भाई जी आप मधुबन गए थे, देखा आपने टीवी में, नींद कर रहे थे आप, दिखाई देता है, सब लोग देखते हैं, सारा विश्व देख रहा है, इसलिए आंखें खोल के 5 मिनट अच्छी तरह से योग करो। ओम शांति।
सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को